एकादशी है,
कार्तिक एकादशी,
इसके बाद में उत्थान एकादशी आने वाली है। उत्थान एकादशी के बाद से बहुत से लोग व्रत समाप्त करते हैं और कुछ लोग पूर्णिमा तक व्रत करते हैं। एकादशी में व्रत समाप्त होने पर भी 5 दिन भीष्मक पर्व पड़ता है,
भीष्म पंचम।
इसलिए क्यों हलो बंद होएगा लोग खाना है। द्वादशी से द्वादशी तक कुछ लोग व्रत करते हैं, कोई पूर्णिमा से पूर्णिमा, तो अभी पूर्णिमा तक जरूर सबको व्रत करना चाहिए। ये राधा जी का ये व्रत है, कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी राधिका जी। इसमें थोड़ा सा भी यदि कोई नियम पूर्वक कोई यह व्रत करता है तो राधा जी प्रसन्न हो जाने से कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते। अभी कीर्तन में एकादशी का इन लोगों ने गाया, यदि एकादशी व्रत न रहे और सब व्रत भी करे तो उसका कोई फल नहीं। सब व्रत मिलकर के कोटि कोटि मिलकर के भी एकादशी के एक थोड़े से अंश के बराबर, पाषण के बराबर भी इनका फल नहीं होता। इसलिए ब्रजवासी लोग और हमारे जितने वैष्णव लोग हैं एकादशी व्रत जरूर करें, इसलिए इस महीने में जरूर करना चाहिए। यदि हो सके तो प्रतिदिन भागवत भी सुनना चाहिए, भगवान की लीला कथाएं सुननी चाहिए। अभी सभी लोग बाहर से आकर के कहां कहां से, अमेरिका, इंग्लैंड और बंगाल और बिहार कहां कहां से आकर के इस महीने में परिक्रमा करते हैं, ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं, किंतु यहां के लोग बहुत कम करते हैं। वो देखते हैं कि घर की है। और विश्व के लोग कहां कहां से आते हैं, कितना कष्ट करके आते हैं, पैदल चलते हैं, परिक्रमा करते हैं। हम समझते हैं कि वो लोग इसकी महिमा अधिक जानते हैं, आप लोगों को तो देवी की तरह में पूजा करेंगे, किंतु पूजा उनकी भी होनी चाहिए, उन्हीं की होनी चाहिए। आप लोग समझते हैं कि हम घर में हैं, क्या ब्रज में जाना है, इधर करना उधर करना, आप लोगों को फुर्सत नहीं है और उन लोगों को सब छोड़ छाड़ करके यहाँ पर आए। ब्रज की महिमा हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ रख कर और ब्रजमंडल की परिक्रमा भी प्रति वर्ष करते हैं। आप लोगों ने एक बार हमने कर लिया था तो एक बार आप लोगों ने खा लिया था, रोज रोज क्यों खाती हैं, रोज रोज क्यों पानी पीती हैं, खाती हैं। इसलिए कभी कभी समय मिले ब्रजमंडल की परिक्रमा भी इसमें करना जरूरी, क्यों भागवत तो पुस्तक में लिखी है भागवत, और यदि परिक्रमा करेंगे अपने आप, गिरिराज में भागवत लिखा हुआ है, यमुना जी में भागवत लिखा है, नंदगांव, बरसाना, ये सब स्थानों में भागवत अपने आप लिखा हुआ है, वो अपने आप जाने से ही लीला की स्फूर्ति हो जाए। हम लोग अभी गए थे सब 12 वनों में और कितने उपवनों में, वहां वहां की लीला स्थलियों का हम लोगों ने वर्णन किया। आज जो बाकी रह गया है वो सबका हम वर्णन करेंगे। देखो एक छोटी सा स्थान है अजनौ, अजनौ अभी हम जहां गए थे उस दिन हमने छोड़ दिया था शेरगढ़ में, नहीं कहां छोड़ा था, कोसी में हम लोगों ने छोड़ दिया, कोसी से यहां चले आए। कोसी के बाद में अजनौ के एक स्थान पड़ता है, अजनौ को मैंने क्या, साधारण आदमी उस गांव का आदमी नहीं जानता है जो अजनौ क्या चीज है, किंतु कृष्ण लीला के नाम पर इसका नाम पड़ा, आंजन से अजनौ। आंजन, अंजन होता है ना, काजल होता है, उसको आंजन कहते हैं। किसी दिन राधा और कृष्ण जी बैठे हैं और राधा जी के देखा जी खूब श्रृंगार में सब ठीक है किंतु आंख में काजल नहीं है, तो कृष्ण ने मंगाया काजल, आंजन मंगाया और अपने हाथों से काजल करने काजल किया ने? किंतु यहां तक बढ़ा करके यहां तक लेकर के चले काजल। राधा जी से कहते हैं देखो, तो वो देखने लगी कहे तुमने ये क्या कर, तो उसने फिर से बिगाड़ करके अब फिर से काटना, तो वो यहां तक चलाया, फिर उसको मिटाया, फिर करने लगे, बार बार मिटा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। राधा जी के हृदय में भी, उनके हृदय में भी कुछ सिहरन सी आई, ये सब लीलाएं वहां पर हुई जहां पर आजन किया। और बार बार पूछ रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, वो स्थान का नाम है। छोटी छोटी बात है, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि नहीं मैं नहीं जानता, तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे तो तब फिर ये सुनेंगे कैसे। इसलिए ब्रजमंडल ये कार्तिक महीने में हम लोग घर बैठे नहीं रहते, ब्रजमंडल में स्थानों स्थानों में हम परिक्रमा करते हैं। और वहां पर लिखा हुआ आपने, आप उन स्थानों में भागवत लिखा, अभी चीरघाट गए थे वहां की कथाएं हमने सुनाई, और सब जगहों में गए थे। अभी हमने जहां जहां हम लोग गए थे उसमें थोड़ा सा स्थान बाकी रह गया, तो उसका अभी हम बतलाएंगे कि कौन कौन स्थान में हम नहीं गए, कौन कौन स्थान में गए, और उसका वर्णन हम संक्षेप में यहाँ पर अभी बतलाएंगे। उसके पहले एक बात बतला देना चाहता हूँ कि हम लोगों की परिक्रमा करीब करीब हो चुकी है, किंतु अभी बेलबन नहीं गए और वृंदावन में नहीं गए, भातरौल में नहीं गए, और भी कुछ स्थान में नहीं गए। उसको अभी गोवर्धन में हम गए हैं, पूजा भी की है, परिक्रमा नहीं की है, तो उसकी हम परिक्रमा 16 तारीख को करेंगे, और उसी दिन वहीं पर अन्नकूट होगा। जो भी जाएगा वो हम लोगों के साथ में प्रसाद पाएगा, किंतु किराया भाड़ा देना पड़ेगा। किराया हम नहीं देंगे, किराया आप लोगों को अपना देना पड़ेगा। तो जो जो जाना चाहते हैं हमारे साथ में, वहाँ के एक एक स्थान में हम जाएंगे, कहाँ पर बाजन शिला है, कहाँ पर वो गोपाल जी निकले, कहाँ पर वो गोविंद कुंड में क्या लीला हुई, दान घाटी में क्या लीला हुई, मानसी गंगा में क्या है, वहीं पर गोपी घाट है, उसमें गोपियों को जहाँ पर पार करते थे कृष्ण, इसके बाद में वो गौर कुंड है, शंकरसन कुंड है, वहां की सब लीलाएं हैं। वहां से आगे बढ़ेंगे तो चलेंगे वहां नवल कुंड, कृष्ण जी का नवल कुंड है, अप्सरा कुंड है, पास ही में सुरभि कुंड है, सुरभि में गजराज कुंड है, ऐरावत कुंड है, और फिर गोवर्धन अन्नकूट का स्थान है। वहां से आगे बढ़ करके फिर गोवर्धन में आएंगे,
चकलेश्वर
महादेव में जाएंगे। क्यों नाम पड़ा चकलेश्वर, चकला बेलनी नहीं,
चकलेश्वर,
चकलेश्वर माने चक्रेश्वर से ब्रजवासी लोग चकलेश्वर करते है, चक्रेश्वर, चक्रेश्वर से
रोटी लगते ना, चकला चकला
करते चलिए, उस स्थान के चक्र से रक्षा कर रहे हैं। उद्धव कुंड में जाएंगे, गोपियों से उनकी बातें हुई थी, वहां पर जाएंगे, और फिर वहां से राधा कुंड में कितने स्थान है, उनकी जीवा है वहां पर, उनका कूप है, वेणु कूप है, गोपी कूप है, महाप्रभु जी ने राधा कुंड को प्रकाश किया था, रूप गोस्वामी इत्यादि ने कहां भजन किया, रघुनाथ ने भजन किया था, और उसके बाद में कुंड कैसे प्रकट हुआ, राधा जी का कुंड का महिमा अधिक है कृष्ण के कुंड से, उसका पानी सफेद, उसका पानी काला, इस तरह से इन सब स्थानों कुसुम सरोवर में जाएंगे। तो जो यदि जाना चाहता है तो पहले से हमको बतला देना है, तो उस दिन फिर हो जाती है, हम लोग बस से जाएंगे यहाँ, और वहां से सवेरे में 6 बजे से हम परिक्रमा आरंभ करेंगे। इसलिए हमको नाम लिखवा देना, जिससे कि हम एक बस तो हमारी जाती है, उसमें हमारे ब्रह्मचारी ही भर जाते हैं, या 2-4 लोग उसमें आ सकते हैं। और ये सब जहां जहां हम लोग आज नहीं गए थे, कल नहीं गए थे, उन सब का स्थान और वहां की महिमा मैं बहुत संक्षेप में मैं वर्णन कर रहा हूँ। अब आप लोग जाना चाहें तो जा सकते, बतलाया
राधा राधा नाम लगी रति श्यामा श्यामा नाम लगी
छाता से होकर के निकले, छाता माने छत्रवन, छत्रवन माने क्या, किसी समय में सुवर्ण सिद्धांत मधुमंगल इत्यादि सब सखाओं ने मिलकर के कृष्ण को छत्रवन में छत्र लगाया, कृष्ण को और सिंहासन पर बैठा दिया और बोले जी आप ब्रज के राजा हैं, ब्रजराज हैं या ब्रजनंदन हैं, आप ही ब्रज के मालिक हैं। कृष्ण ने कहा जी ऐसी बात है तो मधुमंगल तुम जाओ ऐलान कर दो, घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर दो, जो महाराजा छत्रपति नंदेल कुमार महाराजा यहाँ के ब्रज के हैं, नंदनंदन यहाँ के महाराजा हैं, जाकर के कह दो। तो वो जाकर के सब कहने लगा। गोपियों ने सुना ये कहाँ का महाराजा आ गया, हम तो जानते थे कि ब्रज की महारानी श्रीमती राधिका जी। उन्होंने सुन करके, और एक गांव है उमराव, उसी इसीलिए उनका उमराव नाम है। उमराव माने होता है राजा, बड़े बड़े धनी लोगों को उमराव कहते हैं। तो उन्होंने राधिका जी को सिंहासन पर बैठा करके और राजा उनको वृंदावनेश्वरी घोषित कर दी और कह दिया जी ये जो घोषणा कर रहा है उसको पकड़ लाओ। मधुमंगल को पकड़ लिया और उसको पुष्प से डोरी बनाई गई, उसमें रस्सी नहीं रही, केवल पुष्पों से पुष्पों की लड़ी बना करके उसको रस्सी बनाया और मधुमंगल को उसमें बांध दिया और पुष्प की छड़ी लेकर के दो चार छड़ी उनको लगा दिया
नहीं।
और वो आम आम काट करके रोना लगा, हम हमको छोड़ दो, कहे नहीं तुमको छोड़ेंगे नहीं, कहे मुझे भूख लगी है हमको मत छोड़ो किंतु हमको लड्डू खिलाओ। अंत में उन लोगों ने हंस करके उसको ब्राह्मण का जब पेटू ब्राह्मण है इसको दे दो, तो उसको एक दो लड्डू दे दिया। वो बड़ा प्रसन्न होकर के लौट गया, कृष्ण के कहा, कृष्ण से लौट करके कहा भाई आज तो मेरी प्राण बच गई, इसी प्रकार से तुम राजा होने योग्य नहीं हो, तुम्हारे रहते हुए और हमको पकड़ लिया गोपियों ने और उनके चरणों में राधा जी के चरणों में हमें गिरा दिया, तो तुमको लज्जा आनी चाहिए, हमको तो बड़ी लज्जा आई, तुमको भी अब लज्जा आनी चाहिए। तो तब एक बात करो, तुमसे राजापन का काम नहीं होगा, तुम हमारे साथ में आओ और आ करके वो जो उमराव बनी है उसके चरणों में तुम नतमस्तक हो। तो कृष्ण को कृष्ण देखा जी से जरा देखें तो कैसे उमराए बनी है, उनको देखने के लिए उनको उत्कंठा हुई और उनका हाथ पकड़ करके वहां पर आए। वहां पर उनका वो जो रूप देखा कभी ऐसा रूप देखा नहीं, अपूर्व रूप देख करके और वहां पर पहुंचे। गोपियों ने जब उनके चरण में गिरने जा रहे थे तो गोपियों ने ललिता विशाखा जी ने उनको पकड़ करके और राधा जी के बाएं में उनको बैठा दिया। बैठा देने के बाद में दोनों का अपरूप हुआ उनको देख करके। उस दिन से राधा जी को उन्होंने उमराव स्वीकार किया और ये तुम्हारा ही राज्य ये स्वीकार किया, इसलिए उमराव गांव है, वहीं से होकर के हमारी गाड़ी गई। उसी उमराव गांव में एक किशोरी कुंड है, किशोरी कुंड माने राधा जी का स्थान है, तो किशोरी जी के नाम पर वो कुंड बनाए जो रास्ते में पड़ता है जिसको दाहिने तरफ में हम छोड़ करके गए। तो वो किशोरी कुंड के समीप ही में हमारे लोकनाथ गोस्वामी जी भजन करते करते बहुत दिनों के बाद में वो खैरा नामक ग्राम में यहाँ पर किशोरी कुंड में उमराव गांव में छत्रवन में और वृंदावन के और स्थानों में खैरा में वो भजन करते थे। अब बड़े त्याग के रूप में रहते वैराग्य रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे परम वैराग्य, तो उनको वहां पर एक तालाब में सफाई हो रही थी, उसमें से एक विग्रह राधा विनोद जी उसमें से निकले। लोगों ने उनको बुला करके दिखाया, उन्होंने कहा ये यही हमारे आराध्य थे, तब से पूजा करने लगे। अंत में जब वो श्लोक को छोड़ने लगे, कृष्ण की अप्रकट लीला में जब प्रवेश करने लगे, तो वहाँ गोकुलानंद जी का जहाँ मंदिर है, जहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का स्थान है, भजन स्थली, वहीं पर वो उस स्थान वहाँ पर रख गए। उस समय रूप गोस्वामी इत्यादि ने वहीं पर रखवाया, और वहीं पर विनोद बिहारी जी उनके थे, गोकुलानंद में अभी भी निकला थे, किन्तु वो अब चले गए हैं वहाँ जयपुर में। तो अभी कोई कोई दिखलाते हैं यहाँ पर भी, राधा दामोदर ने भी उनको दिखलाया, किन्तु असल में वो चले गए हैं जयपुर, उनके विजय विग्रह यहाँ पर है। यह है उमराव गांव। तो उमराव गांव में ही राधिका जी की सरकार बनी थी, और कोतवाल बनी कौन, ललिता बनी कोतवाल,
और पकड़े गए
हाँ, और पकड़े गए मुरारी को पकड़ लिया, और उनका विचार किया, उनका भी वकील आया, इनका भी, उनका वकील कौन, सीताम मधुमंगल इत्यादि ये सब उनके वकील, और श्रीमती राधिका इसके ललिता इत्यादि के, और ये मुकदमा दायर कौन किया है, विशाखा इत्यादि जी ने ये सब, ये ललिता ललिता जी तो कोतवाल थे, और गोपियों ने मिलकर के वो केस दायर किया, और ये कोतवाल बन करके पकड़ने के लिए सम्मन लेकर के गई ललिता जी, और उनको पकड़ ले आए, और वहां पर बहस छिड़ी। बहस छिड़ने के बाद में फिर साक्षी के अभाव में उनको बरी कर दिया, बरी कर दिया, किंतु साक्षी के अभाव में, मामला दायर सब ठीक था, किंतु साक्षी नहीं मिली, इसलिए उनको
साक्षी नहीं,
बस केवल दस्तखत करा दिया उनसे, या अब ऐसा नहीं करेंगे, बस इतना ही दस्त हुआ। तो ये रहा उमर उमा गांव, क्या उमराव, वहां पर जब राधिका जी को बैठ के सामने ने उनके बाएं तरफ में बैठा दिया, तो इसमें लिखा है भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, उसमें सब लीलाओं की परिपाटी का वर्णन है, उसमें लिखा है राधिकार प्रति मधु कहे बार बार, मधु माने मधुमंगल, वहां पर बैठाया, बैठा करके कहने लगा बार बार, अबे कृष्ण लेह राज्य पर अधिकार, राधिका जी को कह रहे हैं, राधिकार प्रति मधुमंगल कह रहे हैं, देखो अब मैंने कृष्ण को यहाँ पर ला करके तुम्हारे पास में बैठा दिया, अब ये तुम्हारा राज्य है, कौन कृष्ण, अब इस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, अधिकार कृष्ण दिवेन एक आलिंगन रत्न से तुम्हार भेटता होइ वे करी जत्न, लइबे करी जत्न, अब इनका तुम राज्य अंगीकार करो, अब ये राजा नहीं कृष्ण, राजा तो अब तुम हो गई, और ये तुमको इसके बदले में जो देंगे इसको तुम कर के रूप में देंगे, उसको तुम अंगीकार करो। और भी बहुत सी बातें उसमें लिखी हैं। इसके बाद में नरीशेमरी एक स्थान है, नरीशेमरी आजकल देवी जी का वहां पर पूजन होता है, राधिका जी का, देवी वहां की राधिका है, किंतु पूजन करने लगे हैं सब देवी की। नरीशेमरी मैंने नौ को पहले ह को न कहते थे, बंगला में है ना,
जैसे ओपिनीति अभिश्रुति इसमें से चेंज होता है, ओपिनीति अभिश्रुति अश्रुति वश्रुति ऐसा पांच प्रकार का है, उसमें चेंज होता है। अच्छा,
तो इसमें हरी था सब हरी शब्द था, तो हरी से नरी हो गया, श्यामरी श्यामली, हरी श्यामली बने, इसलिए हरी से नरी हो गया और श्यामली से हो गया श्यामली। तो ये अब ये क्या हुआ, पहले का नाम हरी श्यामली, हरी श्यामली बने, राधा जी को मान हुआ, उनका मान किसी प्रकार से उतरता है। तो श्याम जी श्यामा सखी बन करके वीणा दिया और वीणा वादन करते हुए उनके स्थान में पहुंचे। इतना सुंदर राग रागनी से गाया, गली में गुजरते हुए राधा जी ने कहा जी उसे बुलाओ। तो एक तो पहले से वो जरा खिन्न है कृष्ण के विरह में, उन्होंने बुलाया, वो आ गई। सखियों का समाज बैठा था, उन्होंने कहा जी सखी तू बड़ा सुंदर गाती है, ये पहली बार तुमको इस ब्रज में देखा गया, तुम कहाँ रहती है? तो अपना नाम बतलाया, अपना नाम श्यामा सखी बतलाया। तो वहां पर ने कहा अच्छा तुम एक गान करो। तो इतने सुंदर रूप में राग रागनी से उन्होंने गान किया, राधा जी प्रसन्न होकर के अपने गले का हार उनको पहना ले। ज्यों ही पहनाया त्यों ही कृष्ण का अंग सिहरने से वो समझ गया अरे ये दूसरा कोई नहीं है, ये इसलिए उस वो प्रसन्न हो गई। जब माला देने लगी तो कृष्ण ने माला लिया नहीं, वो हार नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा कहीं इस हार के लिए मैं नहीं आया, मैं इतना राग रागनी से तुमको प्रसन्न नहीं किया, मैंने तुमको प्रसन्न किया तुम्हारा मान रूपी रत्न चिंता मनी है उसको लेने के लिए मैंने किया, तुम अपनी मान रूपी चिंता रत्न हमको प्रदान। बस वो मुस्कुरा दिया, बस उनका मान सब खत्म हो गया। इसलिए ये नरी शेमरी का थी। नरी शेमरी में शेमरी जो है ये श्यामला सखी का स्थान है, यहीं पर उनका जन्म, उनका माता पिता इत्यादि सब है। ये श्यामली के नाम पर शेमरी हुआ, इसलिए श्यामला सखी जी कौन है? राधा जी की सूर्य पंक्ति की सखी है। श्रीमद भागवत में इनके सब क्रियाकलापों का, कृष्ण के प्रति अनुराग का ये सब वर्णन है। वहीं पर पासी में एक धन सिंह है नाम का गांव है छोटा सा। धन सिंह मैंने क्या, धनिष्ठा है ना, धनिष्ठा का धन सिंह रूप। ब्रज में ऐसे ही जितने भी नाम हैं गांवों के इधर उधर बिगड़ टिगड़ करके, किंतु फिर अनुसंधान करने से उनका असल नाम का पता चल जाता, इसलिए धनिष्ठा से हो गया धन सिंह से हो गया ये धनिष्ठा, धनिष्ठा से उनका। धनिष्ठा कौन है? जो समति आज्ञा पाए धनिष्ठा में श्री कृष्ण प्रसाद मुझे राधा है। धनिष्ठा जी कृष्ण पक्षीय सखी है, वो सखी है और कृष्ण की यशोदा माँ की आज्ञा से सब सेवा करते हैं। कृष्ण प्रसाद पा लेने पर यशोदा जी धनिष्ठा के माध्यम से कृष्ण का प्रसाद राधा जी के पास में दिए, और भी घर का जितना काम है ये धनिष्ठा जी करती हैं यशोदा जी के घर।
यशोदा भवन में नित्य रहती,
नित्य रहती हैं, कृष्ण को दर्शन कृष्ण की सेवा यशोदा जी नाम की, और भी सखियां हैं जिसमें कि ये प्रधान है। पासी में एक रणबाड़ी है,
रणगड़ी
रणबाड़ी, रणबाड़ी मैंने कमदार पर रण काम का रण, मैंने प्रेम का चुनाई वहां पर हुई थी, दोनों में इसके संबंध में युद्ध हुआ, इसलिए पहले से इसका नाम है रणबाड़ी। राधा और कृष्ण के विलास का स्थान है इसलिए उसका नाम है रणबाड़ी। किंतु पीछे से वहीं पर एक कोई कृष्णदास नाम के एक ब्रह्म ये रहते थे भक्त लोग, भक्त और यहाँ के राधा कुंड इत्यादि भक्तों के साथ में इनका बहुत ही मेल था और ये सिद्ध माने जाते थे। कुछ दिन के बाद ना जाने क्यों इनके हृदय में इच्छा हुई मैं द्वारका जरा घूमा। उनकी इच्छा होने पर रात को स्वप्न हुआ, मानो श्रीमती राधिका जी कह रही है अरे तू वृंदावन को छोड़कर के ब्रज को छोड़कर के मत जाओ। तो उन्होंने सोचा जी कोई बात नहीं, स्वप्न ऐसे ही होता है, ऐसे ही स्वप्न हो गया होगा। इतने में वहीं का कोई ब्राह्मण गांव का आदमी आया, बोला जैसे द्वारका चलेंगे? मैं द्वारका जा रहा हूं। अरे ना भाई हम नहीं जाएंगे, हमारा एक खराब स्वप्न हो गया, अब मैं नहीं जा। उसने कहा देखो तुमको खर्चा वर्चा नहीं देना पड़ेगा, रुपया पैसा तुम्हारी सेवा मैं करूंगा, तुम हमारे साथ में चलो। तो उनको फिर से उत्साह आ गया और स्वप्न को झूठा मान लिया और वो चल पड़े। वहां जाकर के द्वारका इत्यादि में रह करके उनको बड़ा अच्छा लगा और वहां पर जाने पर ताप देते हैं, छाप रहता है क्या वो उसमें, वो चतुर्भुज का कोई नारायण का या किस चीज का छाप होता है, वो चक्र का छाप देते हैं। जलती हुई पीतल की या तांबे की कोई चीज होती है, गर्म करके और छाप देते हैं। इसीलिए बहुत से लोग पहले डरते थे, हम लोग भी गए थे तो वहां पर गुरु जी के साथ में गए थे 1952-51 में हम लोग गए, तो वहां पर सब छाप देते थे,
सबको
छाप देंगे ही, हम लोग नहीं दिया, हम लोग बच गए, जितने सन्यासी और ब्रह्मचारी और बाकी सब लोगों को छाप दिया। उस समय में एक लोटा पानी का दाम 1 रुपया, बड़ा कुआं किंतु पानी थोड़ा सा, पानी उधर नहीं मिलता है, तो उस समय में छाप देते थे, तो इसको भी छाप दे दिया, तो इसने छाप ले लिया। कुछ दिनों के बाद में फिर मन नहीं लगा तो वहां से लौट करके आया उसी जगह में भजन के स्थल पर। अब जो लीला स्मरण इत्यादि था, जो मन लगना था, भजन में रुचि, नाम में रुचि, ये सब खत्म हो गया, किसी तरह से मन नहीं गया। अपने मित्र के पास में गए, बाबा जी के पास में राधा कुंड, उन्होंने उनको देख करके पहले से ही मुख मोड़ लिया, उनसे बातचीत नहीं की। अजय अरे इस पर राधिका जी प्रसन्न है, यदि इसे आप बातचीत करेंगे तो ये प्रसन्न हो जाए, ऐसा ही होना चाहिए। गुरु वैष्णव इष्ट देव हमारे किसी से बातचीत नहीं करते, हम भी बातचीत नहीं करेंगे, जो उनके प्रिय हैं उन्हीं से हमारा भी संबंध रहेगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो उन्होंने उनसे बातचीत नहीं किया, बातचीत नहीं, तब वो फिर लौट करके आए, बड़ा विरह में दुख हुआ, उसे आग निकली और रात में अपने कुटी में ही जल करके भस्म हो गया। दूसरे दिन सब लोगों को पता चला, अरे भाई वो बाबा जी खोल रहे हैं, दरवाजा नहीं खोल रहा, दरवाजा खुला देखा वो जी केवल वहां पर भस्म पड़ा। तो उनका एक कोई गुरु भाई था, एक लकड़ी जो शीतल हो गई थी वो भस्म उसमें दिया तो वो भी जल उठी। इसके बाद में रणबाड़ी प्रति वर्ष जिस दिन उन्होंने समाधि दी थी उसी दिन वहां पर उत्सव होता है, आज भी होता है। यह है निष्ठा का प्रश्न। राधा कृष्ण का भजन करेंगे और द्वारका भी 2 अवगाल खाएंगे, बद्रीनारायण में जाएंगे खाएंगे, निष्ठा नहीं। इसलिए एक निष्ठा के साथ में इनका भजन करने से तब जाकर के सिद्धि होगी। इसलिए वो रणबाड़ी स्थित स्थान दोनों तरह से वो प्रसिद्ध है। खैरो, खैरो मैंने क्या, कृष्ण का खैर है तो कुशल है तो खैरो, और क्या खायो रे, खैरो मैंने क्या, बसासुर को खदेड़ा कृष्ण ने, नहीं बसासुर वहीं से खदेड़ा, खैरो ग्राम से, खैरो माने खदेड़ा, खदेड़ा से वो खायो हो गया, खदेड़ा बन और फिर कृष्ण ने वहां से खदेड़ा, इसलिए वो खैर। अथवा खैर के पेड़ पर मरा था किसी असुर को, इसलिए वो खैर। अथवा और भी कारण हो सकते हैं खैर बन, खैर बन माने कृष्ण का, वहीं पर पान और सुपारी और उसमें खैर देकर के उनको निवेदन किया जाता था, इसलिए
असुर को तो कपित पेड़ में मारा था, कपित पेड़ से,
कपित तो कोई शायद खैरो कहते हैं ना क्या, पासी में बखथरा है ग्राम, हम लोग छोड़ करके बाएं तरफ में आए, बखथरा,
बखथरा,
बखथरा माने बकासुर का बदकार स्थान, वही बकासुर को उन्होंने मारा। वहीं पर कामर है, कामर एक गांव, उसको भी छोड़ करके आए।
कामर में क्या हुआ,
कामर माने होता है वो, यहाँ पर कामर लेकर के चलते हैं लड़का करते हैं, उसे दोनों तरफ में कुछ रखा
सामान
रखते
चलते,
और होता है कामर ही एक, और उसी को कहते हैं बांध। कामर सूरदास ने लिखा इसके संबंध में, मैया मेरी कामर छोर लई, मैया मोरी कामर छोर लई। मैया से करें ये यशोदा मैया से रोते हुए, हमारी कामर को किसी ने चुरा लिया, कौन चुराएगा, ये गोपियां ही चुरा दी है, ये कोई न कोई हमारी कामर को चुरा लिया है। मैं बन जात चरामन गैया, मैं ब्रज में गैया चराने जाती हूँ, कामर को यहाँ पर रख दिया, सुनी देख लई, देखा जब कोई रक्षा करने वाला नहीं है तो वो कामर मेरी उठा करके चोरी लेकर के चली गई। एक है कान्हा तेरी कामर जमुना जात बही, अरे हमने देखा है वो कहा कान्हा, अरे जमुना में बहती हुए मैंने देखा, जाकर के ले आओ।
किसने कहा?
गोपी ने ताली बजाते हुए कृष्ण से कहा, उस समय बच्चे हैं ना छोटे से। और दूसरी क्या कहती है, एक है कान्हा तेरी कामर सुरभि खाए गई, सुरभि चबा गई तुम्हारी कामर, और एक कहे नाचो मेरे आगे ले देहूं धूप नई। अरे तुम इसके लिए छोटी सी कमरिया के लिए क्यों रोता है, मैं तुम्हें नई कामर दे देता हूँ, थोड़ा सा नाचो तो ठीक ठीक करके। सूरदास के सूरदास जसमती के आगे अश्वन धार बही, आंखों से आंसू की धार कामर के लिए बह रही है और मैया से उलाहना दे रहे हैं, ये हमको ऐसे तंग करती है। वो है कामर। कामर का एक और तात्पर्य है गुण, काम से कामर। गोपियों के काम को बढ़ाने वाले, कृष्ण को काम को प्रेम को बढ़ाने वाले नाम से इसका नाम हो गया कामर। पासी में हम लोग कल गए तो पीछे पीछ की तरफ में हमने छोड़ दिया किसको, पायग्राम को। पायग्राम पड़ता है जब कोशी से हम आते हैं छतियां शेरगढ़ तो बीच में पड़ता है। पाय गांव माने क्या होता है, पाय माने दूध, पाय माने पानी भी होता है क्योंकि दूध उसका लोगों को बच्चों को भूख लगती है तो कृष्ण बैठ जाते हैं गाय का दूध चुचुआने लगता है, अपने भी खाते हैं बच्चों को भी धारोष्ण सबको खिलाते हैं, इसलिए उसका नाम है पाय। रामघाट तो हम लोग गए, बिहार बंद हम लोग गए, फांदी बट हम लोग गए, कजरोटा में हम लोग गए थे, कसरत पाला गोपी घाट तपोवन में हम लोग गए, नंद घाट में हम लोग नहीं गए। पासी में ये नंद घाट पड़ता है, भद्रवन के पास में समीप में जमुना के किनारे उस पार, इस पार में और उस पार में भद्रवन है, बसवन इधर है और भांडीर भट उधर है, यमाट बन उधर है और इस तरफ में बस बन है। तो वैसे ही नंद घाट कहाँ है, भय गांव और नंद घाट एक जगह है। हम लोग पिछली एक दो बार पहले गए थे, बस में भी गए थे, एक बार हम लोग उधर से भी गए थे, दो बार हम तीन बार गए। तो ये नंद घाट है या भय गांव कौन है, नंदवा को भय लग गया, उनको वरुण उठा करके ले गए। द्वादशी के दिन में खूब सवेरे वो जमुना में स्नान कर रहे और कुबेर के दूत उनको पकड़ कर पीछे से कृष्ण को पता चला तो कृष्ण वहां पर गए, उनको देख करके कुबेर उनकी बहुत सी सेवाएं की, रत्नहार इत्यादि सब दिया, नंद बाबा को लेकर के उनको दे दिया। नंद बाबा ने देखा जैसे उनका इतना विशाल वैभव और कृष्ण के चरणों में सब कुछ रख दिया और स्तव स्तुति कर रहा है तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। जब वहां से लौट करके आए तो ब्रजवासियों से कहा तो ब्रजवासियों ने कहा जी हमको भी उस लोक को दिखलाओ, तो उन्होंने कहा जा अच्छा रहा, तो पीछे से ब्रह्म घाट में उनको तो उसको कहते हैं भय गांव, भय माने भय से गांव, और नंद घाट उसी को कहते हैं जहां पर स्नान करते थे नंद, वहां पर कुछ दिन रहे। पासी में जीव गोस्वामी का स्थान है, जब रूप गोस्वामी ने उनको शासन किया और कहा जे तुम्हारा भी क्रोध नहीं गया भय गांव है, तो वहां पर ये चले गए और वहीं पर भय गांव के पास ही में जहां क्रोकोडाइल रहते हैं मगर वहीं पर किनारे में वो गहवर बना लेते हैं, गुफा बना लेते हैं पानी के बीच भीतर, और उसी में रहते हैं, कभी ऊपर में आते हैं और कभी भीतर में रहते हैं। तो वहां पर मगर सब रहते थे, उनकी माद में रहने लगे, माद बने गड्ढे में रहने लगे और कुछ नहीं खाते, दिन रात रोते। उसमें शुक्र के कांटे हो गए, शरीर अस्वस्थ हो गया। सनातन गोस्वामी गए, गांव वालों ने उनकी बच्चे की बड़ी तारीफ की, आप क्या भजन करते हैं, आपसे भी भजन करता है, दिन रात रोता है और कुछ नहीं खा,
और नाम लेकर रोते हैं,
और सनातन नाम लेकर के रोते हैं। उसी समय में सनातन गोस्वामी देखने गए, देख करके अपने साथ वृंदावन में लाए और वो अपनी कुटी में रख करके और खुद गए रूप गोस्वामी से कहा, भाई जीवों के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है साधुओं का, आ तो दया करनी चाहिए। तो तुम जीव गोस्वामी को छोड़ करके, जीव को छोड़ करके और दया नहीं करते हो। फिर वो बड़े दुखी हो गए, तो जीव गोस्वामी को लेकर के उनकी गोदी में जब बैठा दिया तो ये भी रोने लगे, वो भी रोने लगे। फिर रूप गोस्वामी ने उनकी चिकित्सा कराई, फिर सब ठीक ठाक हो गया। फिर अपने ग्रंथों का सब भार उन पर दे दिया, जितना करेक्शन करना और ये सब ग्रंथों का संग्रह उन्होंने किया। जी गोस्वामी ने हमारे रूप गोस्वामी की जितनी पुस्तकें हैं उनको लिखवाया हाथ से और उसका प्रकाश कराया। चीरघाट हम लोग गए, चीरघाट को हम पार करके बसई में गए। बसई को, बसई बीच में है और इधर में जेई और सेई है। जैसे में हम लोग गए वहां का बतलाया हमने, और बसई को कहते हैं बत्सबन, बत्सबन में हम लोग कल गए। उसको जब हम पार करके जब चले तो पड़ा परखम, परखम परखम माने क्या, परीक्षा से परखम। जब कृष्ण गए चरा रहे थे और अघासुर का वध हुई पासी में है सपौली गांव, जिसको पसौली कहते हैं आजकल, परसौली भी कहते हैं, परसौली माने परसौली, और परसौली माने फिर भी संपौल, थोड़ा सा इधर उधर। परसौली इसलिए कहते हैं कि कृष्ण उसके मुख में पस गए माने घुस गए, प्रवेश करने का नाम है प्रवेश से प्रवेश। तो ये परसौली हो गया, और संपौली किस लिए, ये अघासुर वहां था, अघासुर का वध किया इसलिए संपौली, और उसके मुख में घुस गया इसलिए पसौली। उसी के पास में ये परखम है, ब्रह्मा जी ने देखा वहीं पर पसौली में, अरे परखम में वहीं से देखा, सपौली पास ही एक मील के अंदर में है, इसे अरे इसके मुख में ये प्रवेश कर गए, और उससे तेज निकला, उसके सिर को निकाल करके तोड़ करके, सिर को फोड़ करके और कृष्ण निकल आए, और उसमें से उसका तेज निकला, कृष्ण के पैर में प्रवेश कर गया, उसको मुक्ति मिल गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तब उन्होंने वहीं से परखम किया, अरे ये कौन है, वो नंद का लाला है नहीं, ये परब्रह्म है, यदि परब्रह्म है तो इसकी कुछ लीला देखूं, इसलिए इसको बछड़ों को यहां से हटाऊं। इसलिए परखम मैंने विचार करके परीक्षा की कि वही परब्रह्म है या क्या है, इसलिए उसका नाम हो गया परखम। पासी में चौमुहा है, चौमा ने? जब यहां पर परखम करके सब ठीक ठाक कर लिया और बछड़े सब निकल आए और जब अपनी ग्लानी हुई स्तव स्तुति किया ये चौमुहा में, इसलिए इनका नाम है चौमा। बच्चे करा रहे ये क्या, ये चौमा चौमा चौमा, वो उठ रहे गिर रहे थे और उनकी प्रार्थना कर रहे थे। कृष्ण एक बच्चे के हाथ पर बाया हाथ दे करके दाहिने हाथ से लीला कमल घुमा रहे, मैंने उनकी प्रार्थना ही सुन नहीं है। तो वो है परखम, पासी में चमोहा, पासी में एक मिनट के अंदर में पसौली या सपौली या सर्पस्थली, पासी में है सकरायो, सकरोया, सकरोया, सक माने सक्र जहां रोया, सकरोया, सकरोया, शक्र माने इंद्र,
एखन नाम सकराया,
अब सकरोआ रोआ, सकरोआ, तो सक जहां पर रोया वहां पर गोवर्धन ने जब उनकी, जब उन्होंने भगवान की ये देखा, भगवान ने उन पर कृपा विशेष नहीं की, उनको विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए छठी करा के निकट आ गए जहाँ पर कि कृष्ण वास करते थे और इसी ग्राम में रह करके कृष्ण की आराधना करते थे। इसलिए वहां पर रह करके रोते थे, आराधना करते थे, रोते रोते मंत्र जप करते थे, इसलिए सब हो गया उनका नाम हो गया। जय जैत मैंने जब ब्रह्मा जी ने को जब उनकी प्रार्थना उठना की तो वहां पर देवता लोग भी आ गए और जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो तुम्हारी, इसलिए जय से जय जय हो गया देवता। और पासी में फिर गरुड़ गोविंद हम आ गए। अब हम लोग का कुछ स्थान रह गया है, बहुत स्थान रह गया है, पूरा तो हम लोग गए नहीं, जो बीच बीच में बतलाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से वृंदावन जब जाएंगे तो रास्ते में आएगा भात्रोलाय, भात्रोलाय आएगा, अक्रूर घाट आएगा, और फिर हम लोग अभी जाएंगे बेलबन, अभी गोवर्धन जाएंगे तो बीच में पड़ सकता है बहुत स्थान, शांतनु कुंड पड़ेगा, माधुरी कुंड पड़ेगा, पासी में पड़ेगा अड़िंग, राजा जी का मान अड़िंग है, दिखता नहीं है इसलिए अड़िंग है, और पासी में ये चंद्र सरोवर
पैठ
और पैठा, ये सब स्थान है, ये सब दर्शनीय स्थान है, कृष्ण लीला के स्थान है। तो ये सब का भी वर्णन हम लोग करेंगे पीछे, आज रात हो गई, आज यहीं तक रहे, फिर दूसरे दिन सबका वर्णन करें। आप लोग अभी बताया 16 तारीख को हम लोग चलेंगे गोवर्धन, हमारे समय से सबको चलना चाहिए, एक दिन का मामला है, सब परिक्रमा करके भी नहीं, जिसकी परिक्रमा कुछ नहीं हुई और गिरिराज की परिक्रमा कर दी तो सबकी परिक्रमा हो जाएगी, 84 कोष की परिक्रमा गोवर्धन की परिक्रमा से ही हो जाएगी, उस दिन सब लोग चलेंगे, हमको नाम लिखवा देंगे इन लोगों के पास में, ये कौन कौन चलेंगे, जिसका नाम लिखा है वो तो है ही है, बाकी जिनका नाम नहीं लिखा वो सबको बतला देंगे, जरूरत होगी तो और बस मैं कर दूंगा, हमारे साथ में वो बस जाएगी और साथ ही में वो शाम को लौट करके
आएगी। शरणं प्रपन्न इंद्रेणस्तु चरणाय श्री गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वदामि राधां
मधुरस्मितास्यं
वदामि राधां करुणाकरं कटुमन्नास्ति गते
बृहत् भगवतामृत का अंतिम पद है, हम लोग पाठ कर रहे हैं। हम लोग अब तक परिमंडल परिक्रमा की और विभिन्न स्थानों में वहां की लीला कथाओं का वर्णन किया, इसलिए किया, एक होता है साधन भजन अपने उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए, ये पीछे हो सकता है, बोची जैसे सामने दिखा रखे दिखे ना तुम्हारा ठीक पीछे ने बस दीवार तुम तो ऊंचाई नहीं जमा पीछे तो जरा पाका उस्ताद घूमू ओरा पीछे बस। उन लोगों ने सुना है कि भक्ति एक अच्छी तो भक्ति दो प्रकार से होती है,
la तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देव भामि हरि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण नमने गौरक्षि गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु वार्षिशुन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपनी अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करूं। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु वार्षिशुन भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के शरण में मैं अपनी कोटि कोटि श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करता हूं। सभा के सभापति महोदय त्रिदंडी पादगण वैष्णव आप पूजनीय वैष्णव माताएं बहने मैं सबके प्रति अपना यथाज्योग्य अभिवादन अर्पित करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद शिष्यमत भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता समस्त वैष्णव लोग हमें कृपा करें। सब प्रकार से अयोग्य होने पर भी हमारे पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी ने जो हम पर बहुत ही स्नेह रखते हैं उन्होंने मुझे कुछ निर्देश दिया कुछ हरी कथा हो मैं तो सर्वथा योग्य हूं इसके लिए तो भी वैष्णव का आदेश दो चार शब्द आपकी आपके सामने उपस्थित करूंगा। सबसे पहले मैं बताना ये चाहता हूं कि आज हम जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोगों का बहुत ही परम सौभाग्य है। नित्य प्रति इस कार्तिक महीने में आप लोग शुद्ध वैष्णव के मुख से हरि कथा श्रवण कर रहे हैं। उन्हीं लोगों की कृपा से आप लोग ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहे हैं, शायद अब समाप्ति की तरफ में होगा। आज आप लोग कृष्ण के जन्मस्थली महाबल गोकुल में आप लोग उपस्थित हुए हैं। मैं यहां आकर के बहुत प्रसन्न हुआ कि आप लोग श्री भक्ति विनोद ठाकुर के भजन अर्हस्य से नियमित रूप में भजन की तारतम्य से अष्टकाली और उधर सिद्ध प्रणाली के द्वारा मानसिक सेवा का भी आप लोग अष्टकालीन दोनों सेवाएं और भजन की पद्धति आप लोग श्रवण करें। विशेष करके यह महीना कार्तिक महीना है। कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका जी स्वयं, जिस प्रकार से पुरुषोत्तम माह के अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण, उसी प्रकार से इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका, इसलिए वो कार्तिकेश्वरी भी कहलाती हैं। उनका एक नाम है ऊर्जेश्वरी, उनका एक नाम ऊर्जेश्वरी है। उन्हीं के नाम के ऊपर में इस महीने का नाम ऊर्जाव्रत भी रखा गया है। ऊर्जा माने क्या, जिसको हम लोग पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। विश्व ब्रह्मांड का संचालन ये शक्ति के द्वारा ही संभव है। ये शक्ति कौन है, ये स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका जी। इनके बिना कृष्ण कुछ नहीं कर सकते। जितनी भी ऊर्जा होती है, भजन का भी बल है, सब ऊर्जा शक्ति का मूल स्रोत ये श्रीमती राधिका जी है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में भी तेजो बार मृदान जत्र विनिमयो त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वयं निरस्त को कम सत्यम परम धीमहि। हमारे गोस्वामी ने, विशेष करके सनातन गोस्वामी ने, वैष्णव तोषणी में जी गोस्वामी ने, लोकतोषणी और श्री विश्वनाथ चतुर्वर्ती ठाकुर ने दिग्दर्शनी टीका इत्यादि में कुछ इस पर हिंट दिया है। यहां पर तेजो, तेजो मैंने क्या, और भी बहुत से अर्थ दिए गए हैं, किंतु संबंधित अर्थ को लेकर के चल रहे हैं। यहां पर तेज श्रीमती राधिका जी तेज हैं कृष्ण की, जो ब्रह्म गायत्री में जो बतलाया गया है भर्ग देवस्य धीमहि, देवस्य भर्ग कृष्ण देवस्य भर्ग उनका तेज, जो सूर्य इत्यादि जितने भी स्रोत हैं तेज के, उसके सबके मूल ये श्रीमती राधिका जी हैं। तो भर्ग देवस्य धीमे, उनका मैं ध्यान करता हूं और उसी के लिए बतलाया कि वो हमारे हृदय में प्रकृष्ट रूप से उदित हो। गायत्री का भाष्य श्रीमद् भागवत है, इसलिए भी भागवत उसी लाइन में कहेंगे। यहां पर तेजो वार मृदान, तेजो का तात्पर्य कृष्ण की जो तेज है, यही सत्यम परम धीमहि। कृष्ण के लिए तो हरी है, किंतु उनकी शक्ति के लिए यहां पर सत्यम कौन है, यही शक्ति ही परम शक्ति है, इनका मैं ध्यान करता हूं। वह हमारे हृदय में अपने प्रियतम कृष्ण के साथ में हृदय में उदित हो, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इत्यादि समस्त हमारे हृदय में उन्हीं श्रीमती राधिका जी, जो स्वरूप शक्ति हैं, जो ऊर्जस्वरी हैं, उन्हीं के द्वारा ही ये उदित हो। इसलिए सर्वत्र ये ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधिका, विशेष करके दामोदर महीने में इनकी थोड़ी सी उपासना होने से ही भक्ति की चरम स्थिति, वो सब कुछ प्रेम हृदय में उदित हो सकता है। इसलिए ये ऊर्जावत में ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधिका जी उज्जवश्री लाइन चली गई है। दूसरी बात कि ये दामोदर व्रत है। दामोदर व्रत दो तरह से, एक तो जसोदा जी ने इसी महीने में अभी प्रतिपदा जो गई, कृष्ण को उन्होंने बांधा, जिनका अंतर नहीं है, बाहर नहीं है, भीतर नहीं है, उनको भी ऐसे परब्रह्म को भी उन्होंने बांधा। कृपया सीत स्वबंधने, प्रेम के अतिरिक्त बांधे नहीं जा सकते। आज तक किसी ने नहीं बांधा था। इसी गोकुल में यहीं पर यह विशेष घटना हुई। कृष्ण ब्रह्म है, परब्रह्म है, ब्रह्मा शंकर इत्यादि की तो बात क्या, किसी ने नहीं आज तक बांधा, किंतु यशोदा जी ने प्रेम से यहां पर बांधा। बल्कि कृपा करके वो बंधन में आ गए स्वयं, बिना गोकुल के प्रेम के वो बांधे नहीं जा सकते। गोकुल में दो, एक ही प्रेम के दो दिशाएं हैं, नंद जी और यशोदा जी। यशोदा जी ने बांधा, खोला कृष्ण ने उस प्रेम को, सखा लोग नहीं खोल सके, स्वयं कृष्ण भी नहीं खोल सके, नंद बाबा जी ने उसको खोला। इसलिए यहां पर दामोदर हैं यशोदा जी के दामोदर। एक बड़ी विचित्र घटना हुई, स्वयं बंधन में है कृष्ण, मैया यशोदा जी ने बांध रखा, स्वयं बंधन में रहते हुए भी ओखल को खींचते हुए ले गए, दोनों पेड़ों के बीच से निकल गए, ओखल रह गई उधर, अपने चले गए उधर, रस्सी बंधी हुई है ओखल से, कृष्ण से पेड़ों का संबंध नहीं रहा, रस्सी से जो कृष्ण से संबंधित है उसे भी संबंध नहीं रहा, कृष्ण से संबंधित रस्सी और रस्सी से संबंध हुआ दोनों वृक्ष स्पर्श हो गए और दोनों एकदम मुक्त हो गए। मुक्त ही नहीं, भक्ति भाजन कृतौच, मुक्त तो हो ही गए और उनको ऐसी गति दी दी, प्रेम की गति दे दी, जो नित्य गोकुल वृंदावन में, अपराजित वृंदावन में मधुकंठ और सिग्न कंठ होकर के वहां पर चले गए और स्वयं बधे हुए ही और दूसरों का बंधन खोल दिया। ऐसी लीला कहीं नहीं देखी जाती। तो ये सब गोकुल में ही ये लीला है। एक दामोदर और हैं, एक तो यशोदा जी के दामोदर, और इसी महीने में जो रास हुई थी वृंदावन में, ब्रज में या गोवर्धन में कहिए, जो रसौली के नाम से प्रसिद्ध है, रास के लिए रसौली, चंद्र यहां पर की अपनी गति सब कुछ भूल करके वहां पर स्थिर हो गया, जहां चंद्र सौर इत्यादि है, वहीं पर कृष्ण अंतर ध्यान होने के बाद में जब प्रकट हुए तो गोपियों ने कृष्ण के पीताम्बर के छोर से राधा जी के साड़ी का गठबंधन कर दिया। जब आप कहीं आप भाग करके नहीं जा सकते, इसलिए तब वो राधा दामोदर हैं, यहां पर गोकुल में यशोदा दामोदर हैं, और वृंदावन में देखे हैं ना
जहाँ रूप गोस्वामी की भजन स्थली सेवा कुंज के अंतर्गत है, वो राधा दामोदर है जीव गोस्वामी के आराध्य, दोनों एक होने पर भी वैशिष्ट है। यहां पर बांधे गए हैं बात्सल्य रस से और वहां पर मधुर रस से बांधे गए, ये सब लीला यहीं पर हुई, माने इसी महीने में कार्तिक महीने में हुई। कंस को मारा भी इसी कार्तिक महीने में भी, इंद्र की पूजा हो रही थी उसको बदल करके कृष्ण ने इसी महीने में नंद बाबा को उत्साहित कर कहा जैसे उसकी पूजा करके क्या होगा, क्यों ना गोवर्धन की पूजा हो। इसलिए नंद बाबा को निरुत्तर कर दिया छोटे से बच्चे कृष्ण ने, जहां पर इंद्र नहीं रहते हैं उनकी पूजा नहीं होती, क्या वहां पर वर्षा नहीं होती, लोग जीवन धारण नहीं करते, तो क्यों नहीं गोवर्धन को की पूजा हो। गोवर्धन माने क्या, गो माने गो, गोपी, गाभी, गोवत्स, वेद, बुद्धि, समस्त विद्याएं, सब ये गो से, इंद्रियां ये सभी गो शब्द से, सबको वर्धन करने वाले गिरिराज गोवर्धन है। गिरिराज गोवर्धन की पूजा स्वयं कृष्ण भी करते हैं, गोपियां भी करती हैं। ये गिरिराज गोवर्धन जी हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ हरिदास वर्ग हैं। एक युधिष्ठिर जी हैं हरिदास, हरिदास पर हैं उद्धव जी, और हरिदास वर्ग कौन है, गिरिराज। गिरिराज जी का स्वरूप क्या है, हमारे गोस्वामी ने विभिन्न तरह से उनके स्वरूप का वर्णन किया। कृष्ण ने उन्हीं गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई, दलील दी इंद्र हमारा क्या करता है, गिरिराज से घासें होती है उसमें गौएं चरती है, बछड़े चरते हैं, उसे दूध होता है, उसे माखन मलाई होती है, उसे सब जीवन धारण करते हैं, बादलों को रोक करके वर्षा करता कराते हैं, ये गोपी सबके ये प्राण के रक्षक हैं, इसलिए इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा तो ठीक है, पूजा हुई, इंद्र जी ने कोप किया, मूसलाधार 7 दिनों तक पानी हुई और उसमें कृष्णचंद्र ने क्या किया, गिरिराज जी को बस हाथ ऐसे किया और उनके हाथों पर आ गए, बड़े आनंद से, कृष्ण के ऊपर में कुछ भी भार नहीं था। नंद बाबा ने सोचा क्या, ये कृष्ण के ऊपर भार इसलिए नहीं आया कि हमने नारायण की पूजा की है, इसलिए नारायण जी प्रसन्न होकर के इसको कृष्ण धारण कर रहे हैं, उनकी ये धारणा नहीं, क्योंकि वहां पर ऐश्वर्य भाव नहीं आता है ब्रज में, वो छिप जाता है माधुर्य के द्वारा, नव लीलावत जो भाव है यही श्रेष्ठ है, कृष्ण का यही रूप श्रेष्ठ रूप है। नर लीला समस्त रूपों में भगवान की नर लीला, नर रूप ही
भजन
श्रेष्ठ है सबसे,
सर्वोत्तम कृष्ण जातक खेला सर्वोत्तम
नर बपू उनका स्वरूप है। इसलिए कृष्ण के ऊपर में धारण कर लिया, ये नारायण के समान है ना, क्योंकि गर्गाचार्य ने कहा ये बच्चा क्या धारण करेगा, गोकुल के किसी भी वासी को ये प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है जो कृष्ण धारण कर सकता है, सखाओं ने लठिया लगा दी, हमने इसको धारण कर रखा है। और गोपियां का क्या कर रहे हैं, आंखों पर ही गोवर्धन को उठा लिया है, गुरुराज तुम यदि जहां नीचे खसका तहां जला करके भस्म कर देंगे, जरा उधर ही रहना। और कृष्ण ने उठाया बाम में अंगुली पर, इसका तात्पर्य क्या है, कृष्ण के बाएं में राधिका जी रहती हैं, तो कृष्ण का बायां हाथ और हाथ में भी बाई कनिष्ठ अंगुली, बायां का भी बायां, अर्थात ये श्रीमती राधिका जी ने उठाया, कृष्ण ने नहीं उठाया, इसका ये सब तात्पर्य। बिना शक्ति के शक्तिमान क्या रहेंगे, निर्विशेष निरंजन अनादि यही सब रहेंगे, निर्विशेष रहेंगे, निगेटिव एक्सेप्ट रहेगा, वो शून्य के रूप में दिख पड़े। इसलिए ये जितना ये शक्ति का कुछ जगत में प्रकाश देख रहे हैं, गोलोक में बैकुंठ में जो प्रकाश देख रहे हैं, ये सब राधा जी का ही है, शक्ति का कार्य है, शक्तिमान का कार्य केवल मात्र इच्छा, कृष्ण की इच्छा है, और बाकी सब जो कुछ देख रहे हैं हम लोग सब
श्रीमती राधिका जी का ही ये सब खेल है, यही सब, चाहे वो स्वरूप शक्ति के रूप में, तटस्थ शक्ति के रूप में और ये जड़ा शक्ति के रूप में, ये सब उन्हीं का ही ये खेल। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए न जाने वो क्या क्या करते हैं। गोवर्धन का धारण का मुख्य उद्देश्य इंद्र को परास्त करना नहीं था। यहां पर मधुर लीला कैसे हुई, उठाया उन्होंने, इसलिए गोपियों का जो पूर्व राग है, जो उन सभी तक दूर रहती थी, अब इस विपत्ति के समय में सभी निकट में आ जाएंगी और निकट में आने से क्या होगा, निकट से हम लोग दर्शन कर सकते, गोपियों की मन मनोभिलाषा हो, इसलिए उनको निकट बुला लिया और गोपियां भी वहां पर चली आई। उस समय उनको ये कहने वाला कोई नहीं था जे यहां पर क्यों आए, इसलिए गिरिराज को वध धारण किया, इसलिए कि सभी लोग उनके निकट में आ जाएं और उनका पूर्व राग भी बढ़ जाए। इसमें ये भी इस तरह से गोवर्धन जी का अब देखते हैं कि संबंध क्या है, गोवर्धन का स्वरूप क्या है। कुछ लोग उनको गोपिका विमुदितो हरिदास वर्ज, हरिदास वर्ज है, और ये भी कहा गया कि वो स्वयं कृष्ण ही गिरिराज गोवर्धन में पूजा को प्राप्त करने के बाद में कृष्ण ही गोवर्धन बन करके वहां पर खड़े हो गए हरिदेव के रूप में। तो वो सेव्य भी हुए और सेवक भी हुए हरिदास वर्ज, दोनों वो हुए। किंतु एक बात है, दोनों में हमारे लिए लाभदायक और विश्वास करूंगा, हम किसका शरण ग्रहण करें तो हमको अधिक लाभ होगा। एक विषय है और एक आश्रय है। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन की शिला दी।
विलंब हो जाए तो कहेंगे हम रोक
उनको। स्वामी को महाप्रभु शिला दी थी,
शिला दास गोस्वामी को आप लोग सभी लोग जानते हैं, गोवर्धन की शिला दी। अब शिला दी तो उनको क्या कहा, साथ ही साथ में एक गुंजामाला भी दे। तात्पर्य क्या था, रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं हमको चैतन्य महाप्रभु जी ने गोवर्धन की शिला दी, इसका तात्पर्य है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को राधानाथ जी को हमको दिया, श्रीमती वो कृष्ण को दिया, और गुंजामाला किस लिए दी, ये राधिका जी के चरणों में हमको सौंप दिया जुगल के लिए। गिरिराज जी उसके प्रतीक माने गए और गुंजामाला राधिका जी का प्रतीक माना गया, आप दोनों मिलाकर के ये जुगल हुआ, तो उन्होंने हमको दोनों के चरणों में हमको सौंप कर दिया। तो गिरिराज जी का स्वरूप हम देखते हैं कि नंदनंदन ही, ये गोकुल चंद्रमा ही, गोकुल चंद्र ही, ये कृष्ण ही गिरिराज गोवर्धन, ऐसा भी मानते हैं। इसलिए उनकी सेवा करने से राधा कृष्ण की सेवा मिलती है या कृष्ण की सेवा मिलती है। किंतु हमारे गोस्वामियों ने यह कहा कि कृष्ण और राधिका जी दोनों, हम किसका आश्रय लें, कृष्ण का आश्रय लें या श्रीमती राधिका जी का आश्रय। और जितने संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी दूसरे संप्रदाय के वैष्णव हैं, वो कृष्ण का आश्रय लेते हैं। आप बल्लभ संप्रदाय में भी देखेंगे वात्सल्य रूप से कृष्ण की पूजा, गोपाल की पूजा करते हैं। हमारे माधव उनके जति थे माधवेंद्र की उपाधि, उनके पूजित जो विग्रह श्रीनाथ जी थे गोपाल जी, उनको वहां ले गए और उनकी वो लोग पूजा करते हैं, बड़े आदर के साथ में पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते, राधा गोविंद की पूजा नहीं करते। हमारे संप्रदाय में ऐसा नहीं, जुगल की सेवा होने पर भी हमारे रूप गोस्वामी के जो रूपानुग जो वैष्णव हैं, उनकी धारा में राधिका जी के अनुगत्य में जुगल की सेवा हो, नहीं तो हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में वो नहीं रहेगा। अकेले कृष्ण की पूजा नहीं है या जुगल की बराबरी में भी नहीं है, राधा जी के अनुगत्य में ही सब कुछ हो। राधा जी के पाल्य दासी का हमारे अभी ये कीर्तन लोग कर रहे थे उसमें भी इसी प्रकार के भाव। इसलिए जुगल की सेवा भी होगी किंतु उसमें राधा जी के अनुगत्य में होगी। इसलिए गिरिराज गोवर्धन जी राधा कृष्ण की कौन सी सेवा में योगदान करते हैं? पत्थर बने हुए हैं, इसलिए कि लज्जा का संकोच इत्यादि का भाव न रहे, उनके कुंज कुंज में उनकी लीलाएं होती हैं। परमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे रचियतन जूनो दंदमश्मिन मंदम इतिकल कर्णार्थक लग्न कस्तद्वयोर्मे निज निकट निवासम देहि गोवर्धन। जत्रैव कृष्णो विशुभान पुत्रा दानं गृहीतुं कलहं वितेने सुते महत्त
स्प्रिया जत्र महत्त
स्प्रिया जतस गोवर्धनो मे दिशतां अभिष्ट। जहां पर कि कृष्ण दान के लेने के बहाने दान घाटी में गिरिराज गोवर्धन में और बरसाने में
सकरी खोर
गावर खोर के अंतर्गत में सकरी खोर में दान लेने के बहाने प्रेम कलह किया, वो सब स्थान गिरिराज गोवर्धन में है, इसके साक्षी गिरिराज गोवर्धन है। यहां तक कि प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे उनके कंदराओं कंदराओं में उनके कुंजों कुंजों में सखियों के साथ में खेल कर रहे हैं, सखियों के साथ में विहार विलास इत्यादि कर रहे हैं। एक यहां पर ये निकलता है निष्कर्ष कि कृष्ण की ऐसी कोई लीला नहीं है अत्यंत रहस्य से रहस्यपूर्ण जिसके साक्षी गिरिराज गोवर्धन न हो। इसलिए उनको हरिदास वर्ज कहा गया, यहां तक कि ऐसे दिखलाते हैं कि मैं निर्जीव जैसा हूं। यहां पर कृष्ण को राधा जी को लीला करने के लिए कोई संकोच की बात नहीं होगी। कृष्ण लीला में यहां पर लीलाएं होंगी जैसे वृंदावन में रास हो रहा है तो वहां पर शंकर जी प्रवेश करना चाहते थे, लक्ष्मी जी प्रवेश करना चाहती थी किंतु लक्ष्मी जी का प्रवेश तो हुआ नहीं। शंकर जी ने थोड़ी सी चलाकी करके गोपी वेश वो भी उनके कृपा से जोग माया पूर्णिमा जी के कृपा से उन्होंने गोपी वेश बना करके वृंदावन में स्थित हुए किंतु गोपियों ने बिजाती कर करके उनके केश को पकड़कर तो वहां से बाहर करने की चेष्टा की और गुलचे से मारकर उनका गाल फुला दिया। अंत में रोने गिड़गिड़ाने लगे तो जोग माया ने कृपा करके अच्छा दूर में वहां पर ईशान कोण में तुम बैठो तो वहां पर बैठ करके देखो। पुरुषों का अधिकार राधा कृष्ण के निवृत्त लीलाओं में नहीं है, कोई भी पुरुष नहीं जा सकता, बलदेव प्रभु भी नहीं जा सकते हैं उस रूप में तो और लोगों की तो बात क्या है, और सखा लोग भी प्रवेश नहीं कर सकते, राष्ट्रमंडली में कोई नहीं गया। तो गोवर्धन गिरिराज में जो लीलाएं जो कंदरे कंदरे में ये सब जो हो रही है निवृत्त लीलाएं उसमें कोई पुरुष तो प्रवेश नहीं कर सकता। अब गिरिराज पुरुष है न स्त्री है न न्यूट्रल है न क्या है, यदि गिरिराज के रूप में चतुर्भुज कृष्ण वहां पर जो रूप दिखलाया हरिदेव जी का जो रूप है चतुर्भुज और वो करेंगे आनो रे और ले आओ जो कह रहे हैं तो वो कृष्ण के स्वयं रूप नहीं है। चतुर्भुज रूप का क्या है? तद्रूप है, तद्रूप वैभव है, प्रकाश रूप होगा। तो वहां पर यदि नारायण भी रहेंगे तो वहां पर राष्ट्र नहीं होगी, हम गोपियों से मिल सकते हैं। और गिरिराज जी क्या है? पत्थर तो है नहीं, निर्जीव तो है नहीं, इसलिए उनको वहां पर यदि हम ये कह दें राधिका जी जैसे अपना काय भी करती हैं प्रकाश इत्यादि करती हैं, गिरिराज गोवर्धन जी भी वहां पर अनुगत होकर के वैसे ही भाव बन करके वहां पर हैं, नहीं तो उनकी रासलीला और गोपियों के साथ मिलन कदापि संभव नहीं। इसलिए पुराणों में कहीं देखा जाता है प्रकृति से कृष्ण की प्रकृति से अर्थात स्वरूप शक्ति से अर्थात राधा जी से ये प्रकटित है गिरिराज गोवर्धन, इसलिए वहां पर उनको ये सब सुयोग मिला, नहीं तो पुरुष वहां पर नहीं जा सकता है, कृष्ण का अतिरिक्त कोई भी नहीं जा सकता है, बलदेव प्रभु भी नहीं जा सकते हैं तो और की तो बात क्या है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन के हम शरण में इसलिए जाते हैं कि ये सब लीलाओं में हमारे वो साक्षी हैं, वो हमको इसमें प्रवेश करा सकते हैं, हमको लोभ उत्पन्न अंधता करा सकते हैं। ये कार्तिक महीने में ये सब लीलाएं हुई, इसलिए कार्तिक महीना है सब महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। यदि गिरिराज की थोड़ी सी भी सेवा हो जाए, विशेष करके श्रीमती राधिका जी कई महीने में किसी प्रकार से हो जाए, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर में हो सकती है। वो तो कृपा देने के लिए अधैर्य हो रही हैं, कृष्ण जी जीवों पर कृपा करने के लिए अधैर्य हुए हैं, वही कृष्ण ही जो राधा जी का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृपा करने के लिए आतुर होकर के यहाँ पर आए चैतन्य महाप्रभु, और संकीर्तन के माध्यम से सबको यह प्रेम देने की चेष्टा की, अनर्पित करें चिरागत करूं यहाँ पर। इसलिए इस महीने में यदि थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे वैष्णव के साथ में ब्रजभूमि में हम लोग यदि जाएं, वहां पर वहां की लीलाएं को सुनें, यदि लीला भी नहीं सुने वैष्णव के साथ में हम लोग जाएं, प्रणय भक्ति सब का भक्त
गौर
अमार जे सब स्थान
करल
भ्रम नरंगे
से
सब स्थान प्रणय भक्त संग। आप लोग प्रणय ये भक्त लोग हैं, सब गुरु निष्ठ वैष्णव लोग ही हैं, भजन प्रेमी हैं ये लोग, इन लोगों के साथ में भ्रमण करने से जरूर इनके हृदय की वृत्तियां आप लोगों में संचरित होंगी। इसलिए इस महीने में आप लोग इन लोगों के साथ में ब्रज में जहां जहां भी गए हैं उन स्थान वो स्थान जड़ नहीं है, वहां की खुली यह समझती होगी हमारी कृपा कर ग्रहण करने के लिए आए हैं, उनका किसी प्रकार से स्पर्श होने से, जैसे आप लोग नंदगांव में गए, वहां पर उद्धव क्यारी में भी गए हैं, कदम पटेर में गए हैं, राधा कुंड में गए होंगे, अभी गोकुल में भी आए हैं, वृंदावन रास स्थली है शायद वहां पर पीछे अभी जाएंगे। ये सब स्थलियों में जाने से और प्रणाम करने से, हृदय से उनके शरणागत होने से वो लीलाएं स्फूर्ति होंगी और वो राधा कृष्ण में वो रुचि हो जाएगी और लाभ होगा और वही अंत में फूल। लिखा है ना साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मुक्ति श्रद्धा सुमन सकल साधन श्रेष्ठ ए पंचंग कृष्ण प्रेम जन्माय ए आचरण। ये पांच बड़े शक्तिशाली ये साधन है साधु संग, विशेष करके कृष्ण नाम जो करने वाले जो साधु हैं, नाम प्रधान, कलयुग में नाम के अतिरिक्त कोई दूसरी गति नहीं, इसको आश्रय करने वाले जो संत हैं वो भगवान नाम कृष्ण नाम इत्यादि और भागवत श्रवण मथुरा में वृंदावन में अथवा ब्रजमंडल में नवदीप मंडल में अथवा जगन्नाथपुरी में जहां पर महाप्रभु जी हैं, इन सब स्थलों में साधुओं के अनुगत्य में वहां पर रह करके निरंतर भागवत कथा श्रवण इत्यादि के द्वारा कृष्ण प्रेम सहज ही प्राप्त हो जाता है, यहां तक कि बिना साधन के ही हो जाएगा ऐसा आश्वासन दिया है बृहद भागवतामृत में। उनके साथ रहने से ही, इनके धामों में रहने से साधन की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसा यदि हम अनकंडीशनल सरेंडर करके गुरुपाद करने वैष्णव के निकट यदि हम उनका आश्रय लें, निश्चित रूप में ही होगा। यदि अपराध न हो, यदि अपराध हाथी माता उठे हाथी माता उपाड़े बात छिंदे तार सुखी जाएगा, बस अपराध नहीं होना चाहिए वैष्णव के चरणों में, नाम के चरणों में, धाम के प्रति में अपराध न हो तो ये जरूर ही फल देगा। इसलिए हम लोगों को इसके लिए बचना चाहिए, साधु निंदा नहीं होनी चाहिए, वैष्णव के प्रति कोई अपराध न हो, नाम के प्रति अपराध न हो, धाम के प्रति अपराध अवश्य ही उनके द्वारा। आप लोगों को ये सब सुविधाएं कार्तिक महीने में वैष्णव के संग में ये सब मिला हुआ है, इसलिए आप लोग परम सौभाग्यवान व्यक्ति हैं। मैं अधिक कुछ अब नहीं कहना चाहता, बहुत वैष्णव लोग भी हैं और समय भी शायद कम है, अभी विग्रह प्रतिष्ठा आरंभ होगी, आप लोग एक महीने से सुन रहे हैं, हमसे बहुत उन्नत वैष्णव ये लोग हैं, मैं तो अभी वैष्णवता के निकट में भी पहुंचा नहीं पहुंचा, मैं इन लोगों का उच्छिष्ट उच्चर्जित करके चरवन करके मैं ये कुछ आप लोगों को निवेदन किया। आप लोग बहुत सौभाग्यवान हैं, अवशिष्ट जो कुछ दिन है विशेष करके 5 दिन और एक महीना जो किया किया, इसको भीष्म पंचक कहते हैं। इसमें विशेष सावधानी के साथ में हरि कथा सुनेंगे और वृंदावन में वास करेंगे और अपना भक्ति साधन इत्यादि करेंगे, आप लोग का जरूर कल्याण होगा। राधा कृष्ण के चरणों में अवश्य। एक बात और कहना चाहता हूं उसके सिलसिले में, ये गोकुल है, गोकुल में हम लोग आए हुए हैं, किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुख सुन करके होता है, यहाँ के जितने पंडे लोग हैं और सब लोग हैं वो कहते हैं कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और वहां से ले आकर के नंद बाबा को ये पुत्र दे दिया उन्होंने पाला पोषा बस, और इसके बाद में चले गए फिर मथुरा में चले। कहीं कहीं पर ऐसा देखा भी जाता है, मथुरा वाले ये सब कहते हैं, किंतु गोकुल में रह करके ये यदि कोई कहते हैं गोकुलवासी ब्रजवासी यहां के, तो ये सुन करके दुख होता है। ये नंद बाबा के पुत्र यशोदा के नहीं है, उनके उनके दत्तक पुत्र हैं, दत्तक पुत्र ने सचमुच में ये तब वहां के लिए लिखा गया। वो कुछ कारण इसके हैं, उन लोगों ने भी तपस्या की थी इसलिए वहां पर आविर्भाव हुआ, जन्म नहीं कृष्ण का हुआ, वहां पर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण तत्व का आविर्भाव हुआ, कृष्ण का नहीं। ब्रजेश जो नंदन है, माधुर्य और ऐश्वर्य के जो चरम है, रसामृत अखिल रसामृत सिंधु है, सर्वशक्तिमान है, उनका नहीं, उनके प्रकाश विग्रह का, नारायण का तत्व का, वासुदेव तत्व का वहां पर प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव और जन्म में अंतर है, जन्म गर्भ से होता है, तो कृष्ण की जन्म लीला यहां पर हुई, यशोदा जी के गर्भ से निकले, आप लोग इसको निश्चित रूप में मानेंगे, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, हमारे गोस्वामियों ने भी, चैतन्य महाप्रभु सबने इसको एक स्वर से माना है। आप लोग ये मत समझेंगे कि मथुरा में उनका जन्म हुआ और यहां पर दत्तक पुत्र के रूप में ले आए और रख करके चले गए और कन्या को ले गए, ऐसा नहीं। यशोदा जी को भी 2 पुत्र जमज हुए, एक कृष्ण आगे हुए और पीछे से
जोगमाया।
वहां पर जो कृष्ण थे देवकी के गर्भ से, देवकी के गर्भ से वो पैदा हुए चतुर्भुज के रूप में, और जब ही उन्होंने कहा कि आप प्राकृत शिशु हो जाइए नहीं तो अभी आपको कंस मारने वाला है, हम उसके लिए कुछ चेष्टा करें, तो यहां के जो कृष्ण उत्पन्न हुए, जब पहले कृष्ण हुए और पीछे से जोग माया हुई जबज के रूप में, तो उसी समय में कृष्ण जाकर के और उनको आत्मसात करके द्विभुज हो गए, द्विभुज तो थे ही, चतुर्भुज को अपने अंदर में, अपने प्रकाश को अपने अंदर में ले लिया, वसुदेव जी उसको लेकर के रख गए। पीछे से श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा गया है, जब कंस ने उस लड़की का पैर पकड़ करके जब आज पत्थर पर फेंका तो उस समय आकाश में चली गई और अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकाशित, कहा जरे कंस तुम्हें मारने वाला तो वहां पर प्रकट हो गया, कहीं तू मुझे क्या मारेगा। तो वहां पर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, अदृश्यत अनुजा विष्णु, विष्णु की जो अनुजा है वो अदृश्य हो गई, ऐसा कहकर। तो विष्णु की बहन कैसे हुई, अनुजा माने पीछे से जन्म लेने वाली, कृष्ण के बाद में वहां पर कोई अनुजा पैदा हुई, इसलिए अनुजा कहेंगे, इसलिए अनुजा नहीं कर सकते, इसलिए अनुजा यहीं पर कृष्ण के बाद में जोगमाया जी उत्पन्न हुई, उनकी वो छोटी बहन है उसी को ले, इसलिए अनुजा यहां पर कृष्ण का जरूर जन्म है, तो अनुजा कैसे कर सकते थे, सुखदेव गोस्वामी अंतर जान। तो उन्होंने पहले कैसे लिखा, वो परीक्षित महाराज जी को प्रसन्न करना चाहते थे, किंतु जब तक उनकी शुद्ध बुद्ध थी तब तक तो जानबूझ करके परीक्षित के वंश से संबंधित वो वासुदेव कृष्ण है उनको प्रसन्न करने के लिए कह रहे थे, किंतु लीला का वर्णन करते 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 जब आवेश में आ गए तो वो भूल गए और उनके मुख से जो सत्य बात थी वो निकल गई। वो क्या निकली, एक तो ये अदृश्यत अनुजा, और दूसरा नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात आह्लादो
महामना।
नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, आत्मज माने आत्म जाए थे पुत्र कृष्ण, उनके आत्मा से उनके अंग से उत्पन्न हुए। केवल ये नहीं, ब्रह्मा जो हमारे संप्रदाय के गुरु हैं, सर्वज्ञ हैं, वो क्या कहते हैं, नौमिद्धते अब्रबकुशे तरुदंबराय गुंजावतंस परिपुच्छल सन्मुखाय पन्नस्रजे कौलवित्र विशानुवेमि लक्ष्मास्ये मृदुपदे पशुपंगजाय। पशुपंगजाय पशुप माने नंद बाबा, उनके अंग से जाय जाय, उनके अंग से जन्मे हैं, इसलिए यहां पर भ्रम की बात नहीं। और भी कहते हैं नखल गोपिका नंदनो अयम, आप जसोदा जी के पुत्र नहीं है, जरूर उन्हीं के पुत्र हैं, आप उनके पुत्र नहीं है, बस देव देवकी के, देवकी जन्म भादव, आगे अंत में निर्धारण करके कहते हैं देवकी जन्म भादव, देवकी के गर्भ से जो जन्म लिया है, ये बाद के औलमात है, जो नहीं जानते वो ऐसा कहते हैं, ये संदेह की बात है, ये यथार्थ बात है। वो कौन है, वो तो नंदनंदन, इसलिए आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम ब्रजेश तनय, यहां पर भी हमारे गोस्वामी लोग, इसलिए सब प्रकार से देख करके आप लोग निर्धारित करेंगे ये गोकुल महावन में ही उनका जन्म हुआ था, इनकी जन्म लीला हुई थी, मथुरा में उनका आंशिक, और ब्रज से मथुरा भी गए हैं तो वही लौट करके गए हैं, ये वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, इसको जोड़ करके नहीं जा सकते, हम देखें ना देखें वो गोकुल में ब्रज में निर्वंतार वो रहते हैं। कुछ लोग आजकल राजनीति के वजह से धर्म कुछ भ्रष्ट हो रहा है, कलयुग भी है, तो हमने सुना है कि मुसलमान लोग मूर्तियों को तोड़ते फोड़ते थे, पिछले साल की मधु में देखा दुख भी, किंतु दुख होने से कोई लाभ नहीं, हम लोगों को उत्साह के साथ में अपना भजन करते रहना चाहिए, दुष्ट लोग अपना कर्म करें, हम लोग चेष्टा करेंगे उनको बदलने की चेष्टा करेंगे, और फिर पुनरावृत्ति इसकी ना हो इसके लिए भी चेष्टा हम लोगों को करना चाहिए, किंतु हम लोग छोड़कर के यहां से भाग जाएंगे ऐसे नहीं। हमको दुख होता है पुरी के लिए, पुरी में वहां पर जगन्नाथ जी हैं ना, पतित पावन है, किंतु उन लोगों ने उनको पतित बना करके रखा है, पतित बने क्या है, ठाकुर जी का दर्शन करने से, कोई पतित आदमी ठाकुर जी का दर्शन करने से पतित ठाकुर जी हो जाएंगे कि नहीं, ठाकुर जी कैसे पतित होंगे, पतित आदमी का उद्धार होगा, हमारे ठाकुर जी इतने कच्चे नहीं हैं कि उनको दर्शन करने से पतित आदमी दर्शन करेगा तो ठाकुर जी पतित हो जाएंगे, हमारे ठाकुर ऐसे नहीं, हमारे मंदिर ऐसे नहीं है, जो विधर्मी लोग आए और हम अपने मंदिर को भी छोड़ दें और अपनी क्रियाकलाप को छोड़ दें, महाप्रभु के समय में बुद्धि बुद्धिमंत था या कौन था,
सुबुद्धि रहा।
उन्होंने मुसलमानों ने उनको थोड़ा सा वो अपने गड़ुए का पानी पिला दिया था और लोगों ने कह दिया कि ये जाति से भ्रष्ट हो गया, महाप्रभु जी ने उनको क्या, दूसरे लोगों ने उसको ये कहा कि देखो आप लोहे को एकदम तरल कर दो गला कर और उसके मुख में दे दो तो वो पवित्र हो सकता है, फिर हिंदू हो सकता, अरे लोहा गला करके यदि तरल करके दे दिया जाए तो आदमी मर जाएगा, हाँ उनके लिए वही लोगों ने विधान दिया। किसी ने कहा गर्म जाल खौलता हुआ गर्म तेल और उसके मुख में ढाल दो एक किलो तो वो मन मर गया, महाप्रभु जी ने कहा जो कुछ मत करो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कोटि कोटि जन्मों के तुम्हारे पाप और होने वाले पाप, भूत और भविष्यत और वर्तमान के जितने पाप हैं, केवल एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाम, तुम हरे कृष्ण को और उसने हरे कृष्ण कहा, जाओ मथुरा में तुम पवित्र होकर के और वहां पर आदि केशव जी के मंदिर पर बैठ करके वैष्णव की सेवा करना और हरिनाम करना, तुम पवित्र हो गया। किसी के धर्मियों कहने से हमारा मंदिर नहीं पवित्र अपवित्र होगा, हम हरिनाम के द्वारा उसको हम लोग सब कुछ ठीक कर लेंगे, हमारा हो गया है कभी। तो इस तरह से आजकल बहुत से भी धर्म हैं, किंतु हम लोग इससे डरने के लिए नहीं बल्कि उत्साह के साथ में हम भगवान की पूजा पुनः प्रतिष्ठा हम लोग आज कर रहे हैं, महाराज लोग कर रहे हैं, इसमें आप लोग सब लोग योगदान करके भगवान का नाम करने से हम सब लोग पवित्र हो सकते। बोलो गौरचंद्र की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
अपराध हुआ जिसकी सेवा से हमने वंचित हुआ, भगवान अंतर्धान किया, अंतर्धान किए हुए तो भगवान को देखा ही नहीं पाएगा कैसे, कौन निर्गुण है वो तो पत्थर देखता पत्थर को तोड़ता है, वहां पर वो भगवान को तोड़ नहीं सकता, लेकिन हम लोग का अपराध है जिसने भगवान अंतर्धान किया, और भगवान की सेवा भक्त दे सकता है, भक्त कृपा करके देंगे वैष्णव आ गया सब शुभ हो जाएगा, हम लोग का और तकलीफ नहीं होगा, होगा और तकलीफ होगा, आप वैष्णव लेकर
तकलीफ की आनंद हो
प्रेमानंदे।